ओम शांति। ठीक चल रहे भट्टी? बहुत अच्छा आनंद ले रहे हैं भट्टी का। बहुत सुंदर आनंद लेना है आप लोगों को सबको। बाबा घर में आए हो तो ये बहुत अमूल्य में समय है आपके लिए, है ना? तो आज हम बहुत सुंदर रीति से विचार सागर मंथन करेंगे मुरली की। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताया हम सबके लिए कि बच्चे हम सब कौन है? कौन है हम सब? बाबा ने क्या कहा, कौन है? हम सब अंधों की लाठी है। देखिए आप लोग मुरली सुनते हो ना, तो उसको बहुत सुंदर रीति से तैयार करना, पांच पॉइंट्स तैयार करना। एक स्वमान क्या है, बाबा ने हमें कर्तव्य क्या दिया है, आज क्या करने के लिए कहा, आज क्या स्वमान दिया हमें जीवन में, क्या स्मृति दिलाई, ये पांच छह चीजें लिख लो तो आपको सारा दिन में नशा बहुत रहेगा, आनंद बहुत आएगा मुरली से। हम लोग मधुबन में क्या करते हैं, बहुत लंबा छोटी मुरली नहीं लिखते हम लोग, हमें जीवन के लिए जो चीज चाहिए 8-10 पॉइंट्स लिखते हैं और 8-10 पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम सारा दिन उमंग उत्साह में रहते हैं ना। तो हम सब कौन है? ब्राह्मण आत्माएं हैं, है ना, भगवान के संतान है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? बहुत सुखमय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उमंग उत्साह से उड़ना चाहिए हम लोग सब लोगों को। तो उड़ कब सकते हैं? जब ज्ञान को अपने जीवन धारण कर सकते। ज्ञान को हमारे जीवन में धारण नहीं करेंगे तो उड़ नहीं पाओगे। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर बात बताया हमारे लिए आज कि बच्चे तुम अंधों की लाठी हो। अंधा कौन है संसार में? जो अज्ञानी होते हैं। अज्ञान क्या है फिर? अज्ञान क्या है? ज्ञान क्या कहता है कि बच्चे तुम सब आत्माएं हो, तुम संसार में पाठ बजाने आए हो, ये प्रकाश है, है ना। बाबा ने आते ही क्या किया, हमारे लिए ज्ञान का प्रकाश दिया। प्रकाश क्या है कि बच्चे तुम आत्मा हो, लेकिन मनुष्य अपने आप को भूल गया है कि मैं आत्मा हूं, इस संसार में मैं पार्ट बजाने आया हूं। वो भूल जाने के कारण क्या हुआ कि ये शरीर को ही अपना समझना शुरू कर दिया। आत्मा को तो भूल गया कि शरीर ही मैं हूं। हम बचपन में 7 डेज कोर्स कराते थे, मैं छोटेपन से ही ज्ञान में हूं, तो बहने हमको चित्त बदन के सामने खड़ा करते थे तो हमारा आत्मा का परिचय देते थे। तो पहले क्वेश्चन पूछते थे आप कौन हो, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता था कि भाई मैं आत्मा हूं। हर एक व्यक्ति कहता था मैं फलाना, मैं सूरज कुमार हूं, मैं महेश कुमार हूं, मैं श्रीधर हूं, श्रीकांत हूं, ऐसे बोलता था लोग। क्यों? वो अज्ञान के अंधकार में है, वो अपने आप को आत्मा भूल गया है, शरीर समझ लिया अपने आप को। सबसे बड़ा अंधकार है इस संसार का कि मैं आत्मा हूं ये भूल गया, और मैं शरीर हूं, मैं देह हूं। इससे क्या हुआ, उस आत्मा का क्या हुआ, देश के साथ इतना मोह हो गया, चिपक गया जैसा, सबसे पहला अंधकार। और दूसरा अंधकार क्या है इस संसार में, अपना घर को भूल गया हो, मैं कहां से आया हूं भूल गया, ये संसार ही मेरा है, असली घर भूल गया है। जब असली घर भूल गया है तो क्या हुआ, ये घर में फंस गया, कलयुग की दुनिया में फंस गया। और तीसरा, परमात्मा को भूल गया, मैं किसका संतान हूं, मैं क्या कर रहा हूं। जब ये तीनों भूल गया तो अंधा हो गया। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे तुम्हें इस संसार की कल्याण करना है। कल्याण करने के लिए क्या बोला बाबा ने कि निरंतर सेवा की ख्यालात चलना चाहिए आपके अंदर। भगवान ने हमें जीवन क्यों दिया, ये ब्राह्मण जीवन क्यों दिया, हमारे कल्याण के साथ साथ इस संसार की कल्याण करने के लिए। देखिए सेवा का ख्याल कैसे होता है, कोई आत्मा तन से बहुत दिल से सेवा कर सकती है तो तन को यूज करो यज्ञ में अपनी सेवा करते, मन को यूज करना मन को यूज करो। बाबा ने कितना सारा ऑप्शन दिया हमको सेवा के ख्यालत के लिए, एक तन को दिया और मन दिया, हमारे पास धन दिया और चौथा संबंध संपर्क को दिया, है ना। ये चारों तरफ से निरंतर किसने किसी रीति से सेवा करते रहो तो इससे क्या होगा, स्वयं के साथ साथ अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाएगा। और वो आपको अंधों की लाठी बनने की जरूरत नहीं है, उस समय वो खुद ही प्रकाश के ओर चले जाएंगे, अंधे सब अपने जीवन को श्रेष्ठमय बनाएंगे, है ना। फिर बाबा और क्या बोला ये आज मुरली में, क्या कहा बाबा ने, ऊंच पद पाने का आधार, हाँ प्रदर्शनी के बारे में बताया बाबा ने। वो पहले जमाने में बहुत अच्छा होता था, हम जब छोटे थे हम सब गांव गांव में जाते थे, जागो युवा, युवा के बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे गीत होता था, लोगों के कल्याण के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे गीत होते थे। अभी भी आप लोग कर सकते हो ये सब चीजें, अभी तो SML कोर्सेस आ गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट आ गया, बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्सेस आ गए है, आके क्या किया तो अभी हमारा ओरिजिनल ज्ञान को हम भूलना नहीं है। वो क्या कहते हैं आपको आंक कहाँ है बोलते थे, ऐसे घुमा के दिखाते हैं आपको आंक यहाँ है, लेकिन हम लोग पहले क्या करते थे, सीधा सीधा ज्ञान देते थे ना। अभी के आत्माओं के अंदर वो ज्ञान को धारण करने की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, तो उनको थोड़ा सा युक्ति युक्त समझाना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा कि सोचना नहीं है, कभी भी समय मिलता है तो आत्माओं का कल्याण करने का बहुत सारे युक्तियां निकालते रहो। और बाबा ने दूसरा बात बताया कि बच्चे आपको ऊंच पद पाना है, ब्राह्मण तो बने हैं। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे बाबा को बाबा कहते ही दिल में, दिल से बाबा को याद किया, बाबा कहा तो आपको स्वर्ग में सीट कंपलसरी, आप पूजनीय आत्मा बनोगे। लेकिन हमें क्या बनना है, देव कुल की महान आत्मा बनना है, सिर्फ देवात्मा नहीं, देवात्माएं बहुत सारे हैं लेकिन देवकुल में भी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, जैसे कृष्ण है ना, दुर्गा है, अम्बा है, काली है ना, ऐसा बनना है हमें। तो बाबा ने कितना सुंदर बात बताया कि बच्चे आपको ऊंच पद पाना है तो आपकी कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो, वश करो कंट्रोलियों कर्मेंद्रियों को, वश करने का अभ्यास करो। सडनली आप कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कर्मेंद्रिया बहुत चंचल होते हैं। चंचल को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कर्मेंद्र को कंट्रोल करना हो तो क्या करना चाहिए बताइए, हाँ हाँ उनको बहुत प्यार से समझाना सीखो, बहुत प्यार से, धीरे धीरे वश में आते हो। अगर हमारे अंदर से कभी मुख से गलत शब्द निकला तो हम मुख को समझाते हैं, आंखों से गलत चीज देखा हम आंखों को समझाते हैं, ये आंखें तुम कौन नहीं जानते हो, इस सारे विश्व को सकाश देने के लिए तैयारी है भगवान ने, है ना। ये आंखें किस लिए दिया हमें, किसलिए दिया, इस दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए दिया है। हम आंखों को बहुत प्यार से समझाते हैं, हम जो प्रैक्टिस करते हैं पुरुषार्थ करते हैं, हम मुख से कोई गलत शब्द निकला समझो तो हम मुख को समझाते हैं कि हमें मुख से गलत शब्द नहीं निकालना, क्यों नहीं निकालना है, क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि बाबा ने आज बोला ना कि बच्चे तुम पूजनीय आत्मा हो, देवात्मा हो, जिससे इस संसार पूरा पूजा कर रही है, ऐसे पूजनीय आत्मा हो आप। आपके मुख से जो कुछ भी निकलेगा क्या होगा, क्या होगा, वो वरदान बन जाएगा सामने वाले के लिए। देवात्माओं को देखो, असुर लोग क्या करते थे, बहुत भक्ति करते थे सालों साल तक। रावण देखो, रावण को देखो, कुंभकर्ण को देखो, कई लोगों को देखो, जरासंध को, हम कई लोगों का राक्षसों का नाम सुनते हैं ना, बहुत पूजा करते थे। उसके सामने देवताएं प्रत्यक्ष होते थे, सह विष्णु प्रत्यक्ष होता था, शंकर जी प्रत्यक्ष होता था, क्या करता था, उनको वरदान देता था, वो जो कहता था वरदान देता था। उनको पता था कि व्यक्ति को वरदान दिया तो विष्णु को नाश करेगा, तभी भी उनका मुख से अपशब्द निकलता था, नहीं निकलता था। हम देवात्माएं हैं, अगर हमारा मुख से कोई अपशब्द निकला, अगर आप अच्छे योग की स्थिति में हो, उस समय कोई व्यक्ति ने आपको बहुत ऐसे दिल को छूने वाली बात कहा, दुख देने वाली बात कहा, आपने मुख से निकला कि तुम नष्ट हो जाओगे, वो नष्ट ही हो जाएगा। जीवन में कितना भी मेहनत करे ना, वो उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे ये सब कौन है, ये सब आपके भक्त आत्माएं हैं, इष्ट देव देव आत्माएं हैं, भले ब्राह्मण आत्माएं समझो, ब्राह्मण भी कौन है, वो भी देवात्मा, आप भी देवात्मा हो, 84 जन्मों के साथी है हम। जो संकल्प, जो बोल हम इस समय व्यवहार उनसे करते हैं, 84 जन्म तक वो आत्मा हमारे साथ व्यवहार करती है ना, यही 84 जन्मों का खेल है। बाबा ने कहा ना कि बच्चे संगम युग क्या है, संगम युग क्या है, 84 जन्मों का मूल आधार है। हम जो व्यवहार खास करके ब्राह्मण आत्माओं के साथ करते हैं, वो व्यवहार हमें सदा वो लोग रिटर्न में देते हैं। एक बार हम सेवादारी में थे, बोली दादी किचन में सेवा करता था मैं, एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूं मैं आपको। तो दादियां उस समय चक्कर लगाती थी, तो हमारी ड्यूटी क्या थी, दादियों का सारा भोजन व्यवस्था करना, सब दादियों के लिए भोजन बनाने का ड्यूटी थी हमारा। तो दादियां भी आते थे तो ओम शांति करते थे, हम भी ओम शांति करते थे। तो एक बार दादी गुलजार जी से मैंने बात किया था, तो दादी जी मैं ट्रायल लिस्ट में आ रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो बोलती है दादी जी ने बोला कि आपको मधुबन में महान ज्ञानी बनना हो, भगवान के दिल में चढ़ना हो, तो दो चीजें याद रखना, किसी के अंदर अवगुण नहीं देखना, गुणग्राही बनने रहो, दूसरा किसी के साथ स्वभाव संस्कार का टकराव नहीं करना। क्योंकि इस जन्म में आप अगर उस आत्मा के साथ टकराव करोगे, वो 84 जन्म तक आपके साथ टकराव करते रहेगा। फिर क्या करना चाहिए, क्षमा भाव सीखो, सहन करना सीखो, समाना सीखो, ये सब आपके परिवार है, जन्म जन्म के साथी है, उनके प्रति शुभ भावना हो, शुभ कामना हो। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे उच्च पद पाना हो, अपने कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो। अपने कंट्रोल में रखने के लिए क्या करना चाहिए, प्यार से उनको समझाना सीखो, टीच करना सीखो, आप टीचर बनो उनके। जिस कर्मेंद्रिय से आपको गलती महसूस होता है, उस कर्मेंद्र को सामने इमर्ज करो, समझाओ उसको, बाबा का ज्ञान आपके अंदर है, योग की शक्ति है। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे कर्मेंद्रिय जब वश में नहीं होते है ना, तो क्या होता है, दो चीजें आते हैं अवगुण, सबसे पहला अवगुण एक होता है तमन्नाएं, तमन्नाएं माना कामनाएं, अभिलाषाएं। कामनाएं किससे होते हैं, मनुष्य आत्माओं को मनुष्यों के द्वारा होती है कामनाएं। और दूसरा लालच, इसको बाबा कहते हैं इच्छाएं। मनुष्य आत्माओं को आजकल के समय में सबसे ज्यादा दुख देने वाला दो चीजें हैं, एक कामनाएं और दूसरा इच्छाएं। इच्छाएं होती है वस्तु वैभवों से और कामनाएं होती है मनुष्य आत्माओं से। बहुत मेहनत करते हैं माता पिता, बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, सोचते हैं कि मेरे बेटा बहुत अच्छा इंजीनियर बने, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बने, बहुत अच्छा साइंटिस्ट बने, बन तो जाता है लेकिन बाद में माँ बाप को देखना बंद कर देता है, माँ बाप की पालना देना बंद करता है। मैं कितने सारे सेंटर्स में जाता हूँ, हमारे यहाँ भी मैं गया हूँ, कम से कम 20-25 सेंटर्स में गया था, तो वहाँ मेजॉरिटी में वहाँ की जो लोकल पीपुल है, वहाँ के बीके भाई बहने, माना नान बीके भाई बहनों के अंदर सबसे बड़ी बात यही थी, बड़ा होने के बाद बच्चे हमें पालते नहीं है, हमें प्यार से व्यवहार नहीं करते हैं, तो इसलिए दुखी है। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि बच्चे अभी आपको पूरा हिसाब किताब चुक्त करना है, फिर हमें क्या करना चाहिए ऐसे समय में, हमें क्या करना चाहिए, माता पिता को उन आत्माओं से न्यारा होकर प्यार करना सीखो। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बाबा को ही दिल में रखो और किसी को दिल में नहीं रखो। अभी कोरोना काल में हमारे पास बहुत सारे मैसेंजर्स मैसेज देने गए बाबा को, बाबा तो हर मैसेज में ये कहता था कि कोरोना कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ नहीं, ये पूरा विश्व को हिला दिया उसने, और जिसने पूरा विश्व को हिला दिया बाबा कहता है कुछ भी नहीं है, ये तो आपको बेटे हॉलीडेज दिया बाबा ने, समय दिया है, क्यों दिया समय, आपको स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स आने वाले है, ये तो एग्जाम ही नहीं है कोरोना, तो आगे चलकर फाइनल एग्जाम्स आने वाले है, उस एग्जाम्स को फेस करना है आपको, फेस करने के लिए ये टाइम दिया है बाबा ने। तो बाबा ने क्या कहा, दो चीजें बताया था, एक बताया था कि बच्चे आत्माभिमानी बनो, दूसरा है परमात्माभिमानी बनो, अपने आप को आत्मा समझो, आत्मिक स्थिति में स्थित रहो और परमात्मा को याद करो, आपके दिल में परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर परमात्मा के सिवाय आपके दिल में कोई दूसरा कोई भी होगा देहदारी, वो आत्मा आपको बहुत दुख देगा। बाबा ने आज कहा ना कि जुत्ती को याद करते करते हम जुत्ती बन जाएंगे, जुत्ती जैसे बन जाएंगे हमारे जीवन, हम शरीर छोड़ने के पहले अगर देहदारियों के याद में शरीर छोड़ते हैं तो नेक्स्ट जन्म में बाबा ने क्या कहा, जुत्ती माने क्या होता है, चप्पल पैरों के नीचे रहते हैं, हम जूती तो नहीं बन सकते ना, लेकिन कैसे बनेंगे, जूती जैसा दास दासी बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे आप अपने ब्राह्मण जीवन में बहुत सुखी रहना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो, जन्म जन्म का भाग्य बनाना चाहते हो, परमात्मा को दिल में रखो, कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखो, कर्मेंद्रियों के वश में नहीं जाओ, कर्मेंद्रियों के वश में जाओगे तो आपकी इच्छाएं बहुत जागृत होंगे, इच्छाएं होती है वस्तु वैभवों से। हम ज्ञानसर में हम किचन से वॉकिंग करने जा रहे थे, हम दोनों दो दोस्त, हमारा तीसरा दोस्त एक ट्रांसपोर्ट के पास खड़ा हो गया था, मैं बोला यहां क्यों खड़े हो, तो चलो वॉकिंग, तो बोलता मेरा एक फ्रेंड आने वाला है ऐसा बोला, तो आया था उस समय आके खड़ा हो गया था, तो मेरे साथ जो वॉकिंग कर रहा था वो बता रहा था कि रामू ये गाड़ी देखा क्या, तो मैंने देखा हूं बोला, नहीं नहीं ये अच्छी तरह देखो बोला, देखा देखते तो बोलते ये हाड़ी कार है, ये कितना का पता है, 50 लाख रुपए है कार का प्राइस। मैंने बोला यार बहुत अच्छा है, हमारा इनोवा में बोलेरो में इसमें क्या, स्विफ्ट डिजायर में क्या अंतर होता है, तो बोलता है बहुत अंतर होता है, यहाँ बैठ के हम लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं, कितना भी बड़ा बड़ा बम्पर आते हैं ना, जंप करते हैं गाड़ी, हाई जंप होता है ना, तभी भी कुछ नहीं होता, आप आराम से सो सकते हैं इसके अंदर, ऐसे से बोल रहा था। तो हम बात कर रहे थे तो वो ओनर खड़ा हो गया था, बाहर निकला था, वो सुन रहा था हमारी बातों को, तो हमारे फ्रेंड का तो फ्रेंड है ही, तो बोला भाई साहब आप लोग हमारी गाड़ी में बैठी है तो अच्छा रहेगा, मधुबन वाले हो तो देखो, घुमाया हमको, बिठाया घुमा के वापस ट्रांसपोर्ट में लेके आया, फिर बोल रहा था कि भैया बहुत अच्छा गाड़ी आपकी, बहुत अच्छा लगा, तो उसने बोला मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला क्यों, इतना अच्छा गाड़ी को आपने अच्छा नहीं लगा 50 लाख की व्हीकल है, हाँ क्योंकि मेरा वो दोस्त है ना 80 लाख का गाड़ी लिया था, इससे एडवांस मॉडल था ये, वो गाड़ी लेते तो अच्छा था, मेरे बच्चे जब भी इस गाड़ी में बैठते मूड ऑफ हो जाते हैं, पापा वो गाड़ी लेना था, क्यों ये गाड़ी लिया, 50 लाख की गाड़ी क्यों लिया, और 30 लाख लगा था, इससे एडवांस आता था मॉडल। देखिए मनुष्य की इच्छाएं क्या किया उसको, इतना सुंदर सुख सुविधा होते हुए भी उसका सुख नहीं ले पा रहा है, वो गाड़ी में बैठते हुए भी गाड़ी का सुख नहीं ले पाता है ना, तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि बच्चे इच्छाएं बिल्कुल नहीं रखो। क्यों इच्छाएं नहीं रखना है, बाबा आज बोला है। कितना सुंदर बात बताया सार में कि बाबा ने कहा कि बच्चे हम सबको वापस ले जाने आया हूं मैं, आपकी सार को चीज को विस्तार में करने नहीं आया, बाबा विस्तार को सार में लेने आया है ना। सारा सामान निकाल के बाहर फेंक देंगे, आज आपको रात को 11 बजे का ट्रेन है समझो, 9 बजे ट्रांसपोर्ट वाले ने बुलाया, आप क्या करेंगे, सारा सामान निकाल के सूटकेस में डालेंगे ना, सूटकेस के सारा सामान बाहर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्या बोलते हैं उसको, बुद्धिमान कहेंगे, नहीं कहेंगे ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मैं बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता हूं, इच्छाओं को पूरा करने नहीं आया हूं। इच्छाएं हमेशा मनुष्य आत्माओं को दुख देता है, लालसा होता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसमें सुख नहीं मिलता। और बाबा ने गारंटी क्या दिया हमें, अंत तक आपको जितना जरूरत है उतना सब कुछ देगा वो। हम मधुबन में प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, हमारे जीवन में मधुबन ऐसे चलता है क्या, यज्ञ ऐसे चल रहा है, जितना जरूरत है उतना तो कंपल्सरी आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। हमें 100 रुपए की जरूरत है तो 100 रुपए आ जाता है, 1000 रुपए की जरूरत है तो 1000 रुपए आ जाता है, 1 लाख की जरूरत है तो 1 लाख आता है, 1 करोड़ की जरूरत है तो 1 करोड़ आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। दे कौन रहा है, परमात्मा दे रहे ना। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम्हें मुझे दिल में रखना है, तुम्हारी दिल की हर चीज पूरा करूंगा, लेकिन आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, इच्छाओं को नहीं, क्योंकि तुम्हें वापस ले जाने आया हूं मैं, है ना। तो बाबा ने और आगे क्या कहा बताइए, क्या कहा आगे, अटेंशन रखने के लिए बोला था ना बाबा ने, क्या कहा बाबा ने अटेंशन के बारे में, अटेंशन को नेचुरल नेचर बनाओ तो क्या होगा, स्मृति स्वरूप बनेंगे, है ना। जैसे बाबा ने कितना सुंदर आंसर दिया था बाबा ने आज इस बार, कि बच्चे तुम बाहर की दुनिया में मिलिट्री क्या करते हैं, अटेंशन में रखते हैं ना, ताकि कोई शत्रु उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाए, है ना। तो हमें, हम कौन है, मोबाइल किसका चल रहा है, हाँ, तो ऐसा था, तो अटेंशन रखना चाहिए हमें, कौन सा अटेंशन रखना चाहिए, अटेंशन कभी टेंशन में नहीं आना चाहिए हमारे जीवन में, है ना। अटेंशन को टेंशन में लाओगे तो क्या होगा, स्मृति स्वरूप नहीं बनेंगे हम, अटेंशन भी रखना है टेंशन नहीं, ओके। ओम शांति, आज मुली का चिंतन इतना तक है, फिर कभी मिलेंगे, ओम शांति।